आप हैं SBS हिंदी के साथ।
शाम 5 बजे तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, नए कोरोना वायरस से रहें सचेत लेकिन घबराएं नहीं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और गत चैंपियन नाओमी ओसाका पहुंची ऑस्ट्रेलियन ओपन के तीसरे दौर में। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि घातक कोरोना वायरस को लेकर ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सचेत रहना चाहिए, लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है। आपको बता दें कि इस वायरस को लेकर कई ऑस्ट्रेलियाई लोगों का परीक्षण चल रहा है। चीन में अब तक इस वायरस की वजह से 9 मौतें हो चुकी हैं। अब तक ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जापान और अमेरिका में भी इस तरह के कुछ मामले सामने आने लगे हैं। हालांकि ब्रिस्बेन में एक शख्स को टेस्ट के बाद एकांतवास से छोड़ दिया गया क्योंकि उस पर कोई लक्षण नहीं देखे गए थे। हालांकि उसके टेस्ट के नतीजे कुछ दिन बाद आएंगे। रॉयल मेलबर्न अस्पताल में एक संक्रामक रोग चिकित्सक ईरानी थेवजन कहती हैं कि ये महत्वपूर्ण है कि लोग घबराएं नहीं।
All of us are really aware of this, of the potential consequences of the virus. We're also mindful that the Lunar Festival is upon us in a few days. There's a lot of conversation that is occurring amongst the medical professionals, but there's also a lot of conversations that are occurring amongst the public health authorities. The Department of Health have very active surveillance, active involvement in hospitals. And so the level of preparedness is increasing to a level to be able to try and respond to what's happening with this outbreak.
संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त ने कहा है कि जो लोग जलवायु परिवर्तन की वजह से अपना देश छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें दूसरे देश जहां वो जा रहे हैं उस देश को शरणार्थी के तौर पर रखना चाहिए। विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि सरकारों को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति द्वारा सोमवार को किए गए एक ऐतिहासिक फैसले के निष्कर्षों का पालन करने की आवश्यकता है। ये मामला युवा ने तिसियोते का है जो कि किरीबाटी के रहने वाले हैं और उन्हें न्यूजीलैंड से डिपोर्ट कर दिया गया था और आज वो विश्व के पहले जलवायु शरणार्थी हैं। ग्रैंडी कहते हैं कि दुनिया को ऐसे मिलियंस लोगों के लिए तैयार रहना चाहिए जो कि जलवायु परिवर्तन के कारण अपने घर छोड़कर जाने को मजबूर हो रहे हैं।
Well, sometimes it's slow onset of climate change, like rising seas, like the case in question. In other cases, it will be natural disaster accelerated by climate change. And then we should not forget that people on the move themselves have an impact on environment, cutting wood, polluting areas. So we must look at all the different angles.
पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट ऑस्ट्रेलिया भर में लगी आग के लिए जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार नहीं मानते। कुछ अमेरिकी दर्शकों से बातचीत में उन्होंने कहा कि चरम पर पहुंचता मौसम और कार्बन उत्सर्जन के बीच का संबंध कई लोगों के लिए जिद का विषय बन गया है। एबट ने यह बयान वाशिंगटन में कंजर्वेटिव हेरिटेज फाउंडेशन के कार्यक्रम में दिया। आपको बता दें कि एबट खुद भी एक स्वयंसेवक के तौर पर आग बुझाने का काम करते देखे गए थे।
Can be turned to proof. I think that to many it has almost a religious aspect to it. Bushfires are hardly unknown in Australia, and while the current bushfires are probably the worst that New South Wales has experienced, the duration may be unprecedented. In terms of death, no, not unprecedented. The Black Saturday bushfires in Victoria killed 173 people.
जासूसी के आरोप में ईरान की जेल में बंद एक ऑस्ट्रेलियाई ब्रिटिश मूल की महिला ने कहा कि उन्होंने ईरान के लिए जासूस के तौर पर काम करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। काइली मूर गिलबर्ट ने ये बात जेल से गुपचुप तरीके से भेजे गए खत के जरिए लिखी है जिसे ब्रिटिश मीडिया ने प्रकाशित किया है। वो जासूसी के आरोप में 10 साल की सज़ा काट रही हैं, हालांकि वो इन आरोपों से इनकार करती हैं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि तेहरान में एक जेल में अलग थलग बिताए गए 10 महीने के समय ने उन्हें मानसिक तौर पर तोड़ दिया था। हालांकि विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा है कि विदेश मंत्री अभी भी प्राथमिकता के साथ काइली मूर के मामले में काम कर रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग के परीक्षण के प्रस्तावित नियमों पर एक बहस छिड़ गई है। ये परीक्षण यूएस की सीनेट में होना है। राष्ट्रपति ट्रंप की पार्टी से सीनेट में नेता मिच मैकोनल ने तेजी से परीक्षण की बात कही है। उनका प्रस्ताव है कि शुरुआती बहस के लिए 4 दिन का समय दिया जाए, उसके बाद अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष को सवालों के लिए 16 घंटे दिए जाएं, जिसके बाद 4 घंटे बहस के लिए रखे जाएं। इसके बाद ही दूसरे गवाहों को बुलाने के लिए वोट होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर चक शूमर ने कहा कि प्रस्तावित नियम बताते हैं कि मैकोनल राष्ट्रपति ट्रंप के गलत कामों पर पर्दा डालने की मंशा रखते हैं।
If the president is so confident in his case, then why won't he present it in broad daylight? If Leader McConnell and the Republican senators who have said he's done nothing wrong, it's perfect. Why not while the sun is shining instead of at 2 a.m.? Well, it's pretty obvious. It's pretty obvious. Why not? On something as important as impeachment, McConnell's resolution is nothing short of a national disgrace.
और अब खबरें भारत से। नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबड़े, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर की बेंच सुनवाई करेगी। नागरिकता कानून के खिलाफ 140 से ज़्यादा याचिकाएं हैं। हालांकि ज़्यादातर याचिकाओं में कानून को असंवैधानिक करार देकर रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि CAA संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ करता है, ये कानून मनमाना और समानता के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता देने से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बीच नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन भी जारी हैं। लखनऊ में प्रसिद्ध शायर मुनव्वर राणा ने भी CAA को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को समझना चाहिए कि वो कई सालों की मेहनत के बाद यहाँ पहुँचे हैं।
भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ये 80-90 साल की मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँची है। जितना कहे उतना करे, सबका विकास सबका साथ, एक नारा बहुत सीधा सा आपने लगाया है, लेकिन जब आप NRC या CAA बनाते हैं तो उसमें आप खास तौर से एक नाम निकाल देते हैं मुसलमान का। इसका मतलब या तो आपका नारा झूठा है या नारा लगाने वाले झूठ बोलते हैं।
लखनऊ में एक नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दोहराया कि सरकार ने JNU में भारत विरोधी नारे लगाने वालों को जेल भेजा। उन्होंने कहा कि उस वक्त विपक्षी पार्टियों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत विरोधी नारे लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अखिलेश बाबू सुन लो, हमें जितनी गालियां देनी है दो, हमारी पार्टी को जितनी गालियां देनी है दो, मगर भारत माता के खिलाफ इस देश में नारे लगे तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिए।
दूसरी ओर भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कथित तौर पर एक RTI आवेदन के जवाब में कहा गया है कि सरकार के पास टुकड़े टुकड़े गैंग की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस सूचना पर बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि टुकड़े गैंग का अस्तित्व है और वो सरकार चला रहा है। एक RTI कार्यकर्ता ने दावा किया था कि उनकी एक RTI में गृह मंत्रालय से जवाब आया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के संबंध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। मीडिया में आई खबरों को टैग करते हुए थरूर ने ये ट्वीट किया। उन्होंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग का अस्तित्व है और वो सरकार चला रहे हैं, देश बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष CK बोस ने पाकिस्तान के कायदे आज़म जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष बताया है, जबकि उन्होंने महात्मा गांधी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू को सांप्रदायिक करार दिया। उन्होंने विभाजन के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
जिन्ना वॉज अ सेक्युलर लीडर, जिन्ना नेवर वॉन्टेड पार्टीशन, ही वॉज कंपेल्ड, ही वॉज एलियनेटेड बाय द कांग्रेस, he realized he cannot share power in India. That is why only in 1940 in the Lahore conference he raised the Pakistan issue, but prior to that he was not in favor of Pakistan. India got divided because of the communal leaders of the Congress regime, Sardar Patel, Pandit Nehru and even Mahatma Gandhi, who accepted partition.
Aur ab dollar ka hal. आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक भारतीय रुपयों में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 48.70 रुपये थी, जबकि अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 68 सेंट्स थी। और अब खबरें खेल के मैदान से। ऑस्ट्रेलियन ओपन की गत चैंपियन नाओमी ओसाका ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। दूसरे दौर में उन्होंने चीन की झेंग साइसाई पर जीत हासिल की। विश्व की चौथे पायदान की खिलाड़ी नाओमी ने मार्गरेट कोर्ट एरेना में 6-2 और 6-3 से जीत हासिल की। तीसरे दौर में उनका मुकाबला अमेरिका की युवा सनसनी कोको गॉफ से होगा। ओसाका ने माना कि मेलबर्न पार्क में हवा की स्थिति में बॉल को दूर तक मारने में वो परेशान हो गई थी।
People started clapping more, so I guess that's probably the best part of the game. For the drama, to be honest, I think. Like, I was complaining over here, and then I was almost like throwing my racket over there. I didn't, though, but then, it worked out. So, like, I know I've been in this position on this court before, and I had to play a third set, so I was just thinking I really don't want to play a third set this time.
विश्व के नंबर एक खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल मंगलवार को आसान जीत के साथ यहां जारी साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। नडाल ने दुनिया के 73वें रैंक के खिलाड़ी बोलिविया के हुगो डेलियन को सीधे सेट में 6-2, 6-3, 6-0 से हराया। वहीं महिला वर्ग में पूर्व चैंपियन मारिया शारापोवा को पहले ही दौर में मंगलवार के दिन हार का सामना करना पड़ा। क्रोएशिया की स्टार खिलाड़ी डोना वेकिक ने शारापोवा को 6-3, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। और अब डालते हैं नज़र कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। शुरुआत पर्थ से। पर्थ में कल बादल छटते नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान 27 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में बारिश की संभावना है। अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। वहीं मेलबर्न में बारिश कम होती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 21 डिग्री, न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। देश की राजधानी कैनबरा में सामान्य से तेज हवा के बीच बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। सिडनी में कल का दिन बेहद गर्म रह सकता है। यहाँ सामान्य से तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। अधिकतम तापमान 40 डिग्री, न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 33 डिग्री, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में बारिश और आंधी की संभावना है। अधिकतम तापमान 30 डिग्री, न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। भारत की राजधानी दिल्ली में सुबह के कोहरे के बाद बादल छाए रहने की संभावना है। दिल्ली का अधिकतम तापमान 18 डिग्री, न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। खबरों में आज इतना ही।
ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं? एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई या फिर जहां आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहां हम हैं।